ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने की संभावना व्यक्त की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान है। बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। श्री शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो दर रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष 29 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपए में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता भारत की डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 46 लाख खुदरा ग्राहक हैं जबकि 4 लाख व्यापारी हैं। संचयी आधार पर भारत की डिजिटल करेंसी से 2.20 करोड़ का लेन देन हुआ है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि परीक्षण के अंतर्गत आज एक किसान को डिजिटल मुद्रा के रूप में निश्चित राशि भेजी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के लेन देन के लिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्म निरपेक्षता के विरूद्व घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। ब्यूरो इस दौरान कविता का बयान दर्ज कर सकेगी। ब्यूरो ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। के कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है। आतिशी ने कहा था कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उन्हें सोमवार तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि नेताओं के सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों पर मतदाता विश्वास करते हैं और उनके बयानों का प्रचार पर असर पड़ता है। भाजपा ने इस बयान पर शिकायत दर्ज कराई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्रों के किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज नई दिल्ली में 11 राज्यों के निगमायुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। इन जिलों में पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाना है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के अब तक के अधिकतम निर्यात कोटा को स्वीकृति दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं का कोटा निर्धारित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए अगले दो दिन लू चलने की आशंका व्यक्त की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तेलंगाना में कल लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।